नमस्कार, मैं हूँ प्रीति जब्बल। और इससे पहले कि हम आज के मेहमान का स्वागत करें, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहती हूँ। पिछले साल हमारे एक दोस्त मेलबर्न में पहली बार घूमने आए और एक हफ्ता तक हमारे साथ रहे। अब एक अच्छे मेजबान की तरह हम उन्हें सभी जगह पर ले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन वे साहब थे कि केवल कसीनो जाना मांगते थे। जब हम उन्हें वहां ले जाते तो वे अगली सुबह तक निकलने का नाम न लेते। अब यह सिलसिला कुछ 4-5 दिन तक चलता रहा। हम उन्हें कैंगरू दिखाने का प्लान बनाए और वे फिर कसीनो की ओर भागे। आखिरकार हम थक गए और हमारी कुछ समझ में भी नहीं आया कि ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। बाद में उनकी पत्नी से जब बातचीत हुई तब पता चला कि साहब को जुए की लत लग गई है और वे काम का बहाना बना के मेलबर्न सिर्फ जुआ खेलने के मतलब से आए थे। अब हमारे लिए तो ये एक असामान्य घटना थी जिसकी ना हमें पहचान थी और ना ही समझ। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? क्या आप पहचान सकते हैं कि किसको गैम्बलिंग की प्रॉब्लम है? क्या आप जानते हैं कि इन लोगों को सहायता कहाँ और कैसे मिल सकती है? चलिए आज आपके और हमारे इन्हीं सवालों का जवाब देंगी मल्टीकल्चरल प्रॉब्लम गैम्बलिंग सर्विस फॉर न्यू साउथ वेल्स की काउंसलर मिसेस कल्पना श्रीराम। कल्पना जी नमस्कार, वनकम।
नमस्कार प्रीति जी, बहुसांस्कृत जुआ समस्या सेवा यानी मल्टीकल्चरल प्रॉब्लम गैम्बलिंग सर्विस की तरफ से आप सब लोग को नमस्कार।
कल्पना जी, क्या ये सही है कि प्रवासी यानी कि माइग्रेंट्स में जुए की समस्या का खतरा अधिक होता है, जबकि इन समुदायों में जुआ खेलने वाले लोगों की संख्या कम है?
बाहर के मुल्क से जो आते हैं वो उनकी संख्या तो ज़्यादा नहीं है, मगर उनकी समस्या बहुत कठिन होती है, क्योंकि वो बाहर के मुल्क के हैं, उनके सोच विचार अलग हैं। वो अपने को जुआ खेलने जाने पे, जैसे हमारी जगह लक्ष्मी की पूजा होती है, दिवाली में हम लोग थोड़ा ताश खेलते हैं, वैसे समझते हैं अपने आपको भाग्यशाली, जाके जुआ खेलो पैसा बनाओ। और कभी कभी दूसरे एंड में आप देखो तो कोई कोई लोग इसको कलंक कहते हैं, ये शर्म वाली बातें कहते हैं, अरे जुआरी का घर है उसके पास क्या होगा। ये एडिक्टिव डिसऑर्डर है यानी व्यसनी विकार, जो जुआ में फंस जाते हैं बाहर के लोग वो समझ भी नहीं पाते हैं ये कैसा प्रॉब्लम है। और ये दूसरा इनका प्रॉब्लम और ज़्यादा होता है क्योंकि ये काउंसलिंग को समझते नहीं है। हमारा बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे पॉपुलेशन के साथ यही है, मेंटल हेल्थ हो या गैम्बलिंग हो, ये काउंसलिंग को एक ट्रीटमेंट है यानी आबोधन परामर्श सेवा सलाह देने वाली चीज़ को ये इलाज के लिए नहीं समझते हैं। और ये गैम्बलिंग का जुए का प्रभाव भी ज़्यादा नहीं जानते हैं। ये सब मिला के इनका इनकी परेशानियाँ बहुत होती हैं।
कल्पना जी, हमने सुना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को जुआ संबंधी समस्याओं में विशेष रूप से कमजोर पाया गया है, आपके अनुभव में क्या इस बात में सच्चाई है?
बिल्कुल सच्ची बात है प्रीति जी, क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड समझाऊं आप लोग को। आप सोचिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से यहाँ पे आते हैं क्योंकि इनके इनके परिवार वाले इनकी तरक्की चाहते हैं। तो क्या किया, इन्होंने जितना भी पैसा लिया इनको भेज दिया, मगर इनके पास प्रिपरेशन नहीं है। जो परिवार में रहते हैं तो घर वाले सब कुछ करते हैं इनके लिए, बस इनको अपना पाठ करना पड़ता है, जो भी करना है वो करना पड़ता है। मगर जब यहाँ पे आते हैं इनको घर बसाना पड़ता है, खर्चा बजटिंग यानी वो करना पड़ता है ना, जो मोल भाव को ठीक से जितना पैसा आता है उसमें खर्चा करे, वो सब कुछ जानकारी नहीं है इन लोगों को। और उसके ऊपर इनको पढ़ाई करनी पड़ती है और पढ़ाई के लिए काम ढूंढनी पड़ती है, तभी ये अपने आप को सपोर्ट कर पाए। और इसके अलावा इनको भाषा की कमी भी होती है, भाषा नहीं, हमारे मुल्क से ज़्यादातर लोग को अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, मगर यहाँ पर जो बोलन होती है ना वो ये समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, इनको इनकी इनकी बोलन दूसरों को समझ में नहीं आती और इनको दूसरों की, तो बिल्कुल अकेलापन महसूस करते हैं ऐसे में। और एक बात आप ध्यान से सोचिए, जब हम भारत जाते हैं, अपना मुल्क जाते हैं, तो क्या दिखते हैं? छोटे लोग ना 18 से 25 वाले या बाहर खड़े होते हैं, चाय पीते, गप्पे मारते, अखबार पढ़ते, राजनीति बात करते हैं। तो यहाँ पे आके ऐसा कुछ वातावरण नहीं है इनों के लिए, इनके लिए फ्रेंड्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या सोचते हैं, अरे क्लब जाएंगे, किस कोई ना कोई इनको क्लब के बारे में बता देता है, क्लब जाते हैं, सोचते हैं एक बियर पी लें, तो धीरे धीरे वहाँ पे ऐसे घुल मिल जाते हैं कि लगता है उनको ये मशीन से इतनी सारी आवाज़ें, वहाँ का रंग बिरंग वातावरण सब इनको चाहिए, क्योंकि इनको ये अपनी मुल्क की याद दिलाता है, क्योंकि हमारा मुल्क ही ऐसा है। और यहाँ पे आके लोग बहुत लोनली हो जाते हैं। और ये इंटरनेशनल बच्चे जब फंस जाते हैं, इनको जानकारी नहीं होती कि ये एक एडिक्टिव डिसऑर्डर है। अगर हम गैम्बलिंग में जाएँ तो ये व्यसनी विकार से छुटकारा नहीं मिलेगा। और मैंने कभी ऐसे बच्चों को भी देखा, मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, एक एक बंदा था, वो अपना जो भी पैसा बाहर से आता था उसको घर में बैठ के ही, वो इंटरनेट में गैम्बलिंग करता था, घर में बैठ के वो पूरा लुटा देता। तो किसी के पास उसने अपनी पासपोर्ट गिरवी रख दी पैसा लेने के लिए, उसके पास कुछ नहीं बचा। मैं उसको काउंसलिंग करके समझा रही थी, फिर एक दिन गायब हो गया, फोन में भी नहीं मिला, क्योंकि उसके पास फोन भरने के लिए पैसा नहीं था। और मैं तो अपने घर के पास जो मार्केट होती है उसमें जाती हूँ, तो मैंने देखा वो मार्केट में सवेरे 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 6 बजे बस कूड़े कचरे के साथ लुटके हुए पड़ा था। तो मैं उसके पास गई, मेरे हस्बैंड बोला ये क्या कर रही हो? नहीं नहीं मैंने कहा ये मेरा क्लाइंट है। तो फिर हेल्प को बुलाया और उनके माँ बाप को फोन किया, उसको वापस भेज दिया। तो मैं ऐसी सोचती हूँ, अगर मेरे को एक मालूम है, मालूम नहीं कितने लोग बाहर इस तरह फंसे हुए हैं। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, काम करते करते मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की को समझ, हम लोग को समझना चाहिए, उनके परिस्थिति को समझें तो हम उनको थोड़ी मदद कर सकेंगे।
जी, तो आपने शुरुआत में सुना होगा कल्पना जी कि हमारे घर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पर हमें समझ ही नहीं आई थी कि उन मतलब हम पहचान नहीं कर पाए थे। तो किसी को जुए की समस्या है तो उसकी पहचान आसानी से कैसे हो सकती है?
अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है प्रीति जी। अगर थोड़ा सब लोग को ये जानकारी हो तो हम बहुत लोगों को बचा सकते हैं। ऐसा है, अगर आप किसी को जो परिवार वाले में, आपके घर, अपने घर में ही होगा, बाहर होगा, ज़्यादातर ये लोग ना महत्वपूर्ण गतिविधियों की उपेक्षा करते हैं, यानी दे इग्नोर द डे टू डे एक्टिविटी ना, और खुद की देखभाल नहीं करते, सोना ज़्यादा सोते नहीं है, और वर्क जैसे काम को छोड़ के, काम धंधे को छोड़ के नहीं जाते, एब्सेंटीज़म होते हैं, ध्यान पढ़ाई में ध्यान नहीं कर पाते। और पहचानने वाली बात ये है कि जब ये फैमिली के साथ ज़्यादा मिलते जुलते नहीं है, अपने सारे अच्छे सारे फ्रेंड्स को अवॉइड करते हैं। जो अगर व्यक्ति कोई आपका दोस्त हो, ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो जाके खबर लेनी चाहिए क्या हो रहा है बंदे के साथ।
कल्पना जी, कॉल्ड कम्युनिटीज़ या कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डिवर्स कम्युनिटीज़ के लिए किस प्रकार की सेवाएं या सहायता प्रदान की जाती हैं?
बहुत कुछ अवेलेबल है जी प्रीति जी। जैसे गैम्बल अवेयर कहते हैं, वहाँ पे निशुल्क सहाय, यानी मुफ्त मुफ्त की जो बोलते हैं ना, फ्री काउंसलिंग सर्विस मिलती है सबको। जैसे जिन जो अफेक्टेड पर्सन है और उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स, जो भी चाहे सबको मिलती है। और ये ऐसी सहायता, ये गैम्बलिंग काउंसलिंग फ़ोन में भी होती है, 24 घंटा 7 दिन हफ्ते के सारे दिन में मिलती है। उसका एक नंबर है, मैं देती हूँ, 1800-858-8858। और यहाँ पे आमने सामने वाली काउंसलिंग सर्विस भी है, ये न्यू साउथ वेल्स में हमारे सरकार की तरफ से 270 लोकेशन में है। और ये आल्सो ऑनलाइन में गैम्बलिंग काउंसलर, जो भी सलाहकार होते हैं, उनसे चैट लाइन अवेलेबल होती है, ऑनलाइन चैट भी 24 घंटा मिलती है। भाई 24 घंटे का मतलब ये होता है व्यक्ति को भी काम करते हैं, कभी रात को चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है जाके 1,000 गवा दिया, अभी पैसा कुछ नहीं है, बस अब क्या करें, मैं बिल्कुल बेकार हो गया, तो उनको किसी की जरूरत पड़ती है। तो ये 24/7 सर्विस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इन लोग के लिए। और वो उसके वो वहाँ पे वो लाइन जो होता है उसके ऊपर जाके जो भी लैंग्वेज आप टैप करोगे वो लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं। और ये निशुल्क सहाय सलाह निजी और गोपनीय सहायता भी मिलती है, यानी कॉन्फिडेंशियल, सारे परिवार वालों को भी काउंसलिंग मिलती है। जुआ की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तिगत काउंसलिंग, इसको ऐसे ही कहते हैं हिंदी में बोलना है तो और एक बहुत बड़ी बात है वो भी मैं बताऊंगी, ज्यादा लोग इसको जानते नहीं है। कभी कभी बंदे ऐसे होते हैं वो जो घर के पास वाले या अपने ऑफिस के पास वाले एक दो जगह में बार बार जाते हैं, उससे छुटकारा पाना उनको बहुत मुश्किल होता है। तो हम उनको पहले काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद उनको समझाते हैं आत्म बहिष्करण दस्तावेज की व्याख्या, मानी सेल्फ एक्सक्लूशन डीड। इसका ये होता है, इनको सोच समझ के करना पड़ता है, ये अपने को वो वेन्यू से एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर उन्होंने ये ऐसा डॉक्यूमेंट थोड़ा साइन कर दिया, उसमें हस्ताक्षर कर दिया, तो उसके बाद ये वहाँ नहीं जा पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। मगर मैं इसका सक्सेस उतना बढ़िया नहीं सोचती हूँ, क्योंकि ये बंदे क्या करते हैं यहाँ पे छोड़ के कहीं दूसरे और जाके होते, क्योंकि इनको मजबूर बनाना पड़ता है छोड़ने के लिए, तभी ये इससे फायदा होती है। तो बहुत कुछ अवेलेबल है सब, और मगर इसका मेरे एक्सपीरियंस में प्रॉब्लम ये होता है जिन बंदों के साथ ये होता है उनको अपने आप को संभालना पड़ता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। अगर इन्होंने ये डिटर्मिनेशन कर लिया, इसकी मदद हम करते हैं, उसके बाद हम इसको बहुत सारी तरकीब सिखा सकते हैं ये कैसे छुटकारा पाए। मगर वो डिटर्मिनेशन, ये मेडिसिन नहीं है कि हमने इनको दवा पिला दी बस ये कर लेंगे, ऐसा नहीं है, इनको तो खुद करना पड़ता है।
जी, तो कल्पना जी, आप तो हिंदी में भी काउंसलिंग करती हैं, तो क्या हिंदी भाषा में काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है?
मैं ऐसा देखिए ना, मेरा ख्याल तो इसमें थोड़ा अलग है। हिंदी भाषा में काउंसलिंग चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत लोग स्टूडेंट के प्रिटेंस में आ रहे हैं, वो ऐसे स्टूडेंट तो नहीं है मगर वो ऐसे ही आ रहे हैं वीज़ा के लिए और कुछ ना कुछ काम करते हैं, उन्होंने कभी पढ़ाई ज़्यादा नहीं की, उन लोग के लिए हिंदी की बहुत ज़रूरत है। मगर ज़्यादातर आप लोगों को देखो तो हमारे मुल्क से जो आते हैं उनको तो अंग्रेजी समझ में ज़रूर आती है, पर क्या होता है ना, वो अपनापन उनको महसूस होता है, जैसे हिंदी बोलने वाले से वो बात करें उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है ये हमें समझ पाएंगे, ये हमारा कल्चर समझ पाएंगे, इनसे बात करने से हमारी फायदा होगी। तो इसीलिए हिंदी स्पीकिंग काउंसलर्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड।
अच्छा, तो आखिरी में ये जो हेल्पलाइन की आप बात कर रही थी उस पर कौन कॉल कर सकता है और कॉल के बाद क्या होता है?
अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है प्रीति जी। हेल्पलाइन कॉल करने के बाद क्या होता है, वो बोलते हैं आपको काउंसलिंग चाहिए, तो यहाँ पे जहाँ पे भी वो हों कोई भी कॉल कर सकता है। आपका पहला सवाल को कोई भी जो व्यक्ति ये समस्या में है वो उनके परिवार वाले, उनके दोस्त, बड़े छोटे जो भी हो कॉल कर सकते हैं। क्योंकि इस मामले में मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक बंदा था वो बहुत खेलता था माने एक रात को $300,000 उड़ाता था, इतना बड़ा गैम्बलर था वो, मगर वो कभी काउंसलिंग नहीं लेगा। उसके परिवार वाले उसको समझने के लिए, उसके 70 साल के बाप मेरे पास आते थे, इसको मैं कैसे समझूं, मेरे को समझाओ कल्पना जी। तो उन्होंने 7 सेशन किया मेरे साथ, उनकी पत्नी ने 7 सेशन किया। तो ये जो मैं क्यों समझा रही हूँ, कोई भी कॉल कर सकता है, क्योंकि इफ संबंधित व्यक्ति आपके घर में हो, आपके जान पहचान का वाले का हो, आपका कोई उस पर असर हो तो जरूर, आपने आपके सीखने से उस पर कोई असर हो तो आप जरूर हेल्पलाइन को कॉल कर सकते हो।
चलिए, आपने हमको बहुत बढ़िया जानकारी दी, और हमारे सुनने वाले अगर इस समस्या के बारे में और कुछ जानना चाहें तो हमें SBS हिंदी पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का नंबर है 0429996263 या फिर 0429996263। और कल्पना जी, आपने हमें इस दिलचस्प विषय के बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।